एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक बहुत ही जरूरी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं, पीटर सूबर की ओपन एक्सेस।
ओपन एक्सेस, ये शब्द आजकल काफी सुनने में आता है, पर ये किताब, मतलब ये किस बारे में है, ये क्यों इतनी जरूरी है आज?
हाँ, देखिए, ये किताब उस बड़े सवाल से जुड़ी है कि आज भी इंटरनेट के ज़माने में भी दुनिया का इतना सारा ज़रूरी अकादमिक शोध, आप सोचिए, विज्ञान, चिकित्सा, तकनीक, ये सब महंगी मेंबरशिप या पेमेंट की दीवारों के पीछे क्यों बंद है?
हाँ, ये तो है। जानकारी तो बहुत है ऑनलाइन, पर जो सबसे ज़रूरी, सबसे नई रिसर्च होती है, वो कई बार आम लोगों तक या छात्रों तक पहुँच ही नहीं पाती।
बिल्कुल। और पीटर सूबर की ये किताब इसी मुश्किल का हल बताती है। ओपन एक्सेस मतलब सबके लिए ज्ञान का दरवाजा खोलना।
ठीक है, तो ये ओपन एक्सेस क्या है, कैसे काम करता है, इस पर तो हम आएंगे, लेकिन पहले ये पीटर सूबर कौन है, मतलब इनकी बात में ऐसा क्या खास है? आपने कहा ये मूल रूप से दर्शन शास्त्री थे।
हाँ, और यही बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। वो कोई टिपिकल टेक एक्सपर्ट या लाइब्रेरियन नहीं है, वो एक फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। तो उनमें ना किसी भी मुद्दे की जड़ तक जाने की, उसके नैतिक पहलू को, उसके लॉजिक को समझने की एक गहरी क्षमता थी।
अच्छा,
लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ज्ञान कैसे बटा हुआ है, कैसे उस तक पहुंचना मुश्किल है, और उन्होंने अपना पूरा करियर, अपनी पूरी ऊर्जा इसी काम में लगा दी, ओपन एक्सेस, ज्ञान को सबके लिए खुला बनाने की मुहिम में।
तो फिलॉसफी से एक्टिविज्म तक का सफर।
हाँ बिल्कुल। और वो सिर्फ हवा में बातें नहीं करते, वो हार्वर्ड ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे, बर्कमैन क्लेन सेंटर जैसे बड़े संस्थानों से जुड़े रहे। उन्होंने सालों तक एक बहुत प्रभावशाली न्यूज़लेटर भी चलाया, स्पार्क ओपन एक्सेस न्यूज़लेटर। तो वो सिस्टम को अंदर से भी जानते हैं और उसे बदलने का जज्बा भी रखते हैं।
कमाल है, एक विचारक भी और एक कर्मयोगी भी। चलिए तो अब आते हैं किताब पर, ओपन एक्सेस। अगर इसे संक्षेप में समझना हो तो ये क्या है, इसका मूल आइडिया क्या है?
देखिए, ये किताब ना एक तरह से ओपन एक्सेस की दुनिया का मैप है, एक गाइड है। सुबर का मकसद बहुत साफ है, इस कॉन्सेप्ट को आसान बनाना, जो आम गलत फहमियाँ हैं लोगों में उन्हें दूर करना, और फिर इसे असलियत बनाने के लिए क्या रास्ते हैं वो दिखाना।
और ये सिर्फ प्रोफेसर्स या रिसर्चर्स के लिए नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर किसी के लिए है। छात्र, शिक्षक, पॉलिसी बनाने वाले, लाइब्रेरियन या कोई भी जो बस दुनिया को जानना चाहता है, ज्ञान में जिसकी भी रुचि है, उसके लिए है।
किताब शुरू कहाँ से करती है? क्या वो बताती है कि ये जरूरत क्यों पड़ी ओपन एक्सेस की?
हाँ, वो शुरुआत ही उस थोड़ी अजीब सी स्थिति से करती है जिसमें अकादमिक दुनिया आज है। आप सोचिए, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने ही प्रोफेसरों की रिसर्च को पढ़ने के लिए, जो रिसर्च उन्होंने खुद फंड की है, उसे पढ़ने के लिए पब्लिशिंग कंपनियों को करोड़ों रुपए देती हैं हर साल।
हाँ, ये तो मैंने सुना है, इसे सीरियल्स क्राइसिस कहते हैं शायद, जर्नल्स बहुत महंगे हो गए हैं।
बिल्कुल, यही विरोधाभास सूबर के तर्क का केंद्र है। वो कहते हैं कि भाई, डिजिटल ज़माना है, जानकारी को कॉपी करना, बांटना, इसकी लागत तो लगभग जीरो हो गई है ना?
हाँ, बात तो सही है।
तो फिर सिर्फ किसी चीज़ को पढ़ने देने के लिए इतने पैसे वसूलना, ये कहाँ तक सही है? सूबर कहते हैं ये अव्यवहारिक भी है और नैतिक रूप से भी सही नहीं है, खासकर जब ज्यादातर रिसर्च का पैसा जनता का होता है, टैक्स का पैसा।
तो किताब का मेन मैसेज क्या हुआ?
मैसेज बहुत सीधा है, ज्ञान पर ताले मत लगाओ, इसे खोलो। ओपन एक्सेस मुमकिन भी है, जरूरी भी है, और सबके लिए फायदेमंद भी है।
ठीक है, ये तो जबरदस्त आइडिया लगता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। आपने कहा सुबर ओपन एक्सेस को डिफाइन करते हैं, क्या ये सिर्फ मुफ्त होना है, फ्री में पढ़ना?
ये बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सूबर सिर्फ मुफ्त यानी ग्रैटिस पर नहीं रुकते, वो बात करते हैं लिब्रे ओपन एक्सेस की।
ग्रैटिस और लिब्रे, इसमें क्या फ़र्क है?
ग्रैटिस का मतलब है हाँ, आप बिना पैसे दिए पढ़ सकते हैं, एक्सेस फ्री है, लेकिन लिब्रे का मतलब है कि आप सिर्फ पढ़ नहीं सकते, आप उस जानकारी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
इस्तेमाल मतलब कैसे?
मतलब आप उसे कॉपी कर सकते हैं, बांट सकते हैं, उसका अनुवाद कर सकते हैं, उसमें कुछ जोड़कर या बदलकर कुछ नया बना सकते हैं। बस एक शर्त होती है कि आप मूल लेखक को क्रेडिट दें, उनका नाम बताएं।
अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है, मतलब सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसके साथ कुछ करना भी।
बिल्कुल, सोचिए इसकी संभावनाएं। कोई छात्र किसी रिसर्च पेपर के चार्ट्स अपनी रिपोर्ट में डाल सके, कोई वैज्ञानिक किसी और के डेटा को एनालाइज करके कोई नई चीज खोज ले, कोई टीचर उससे बढ़िया स्टडी मटेरियल बना ले, वो भी बिना किसी कानूनी झंझट के। सुबर मानते हैं कि असली क्रांति, असली बदलाव लिब्रे ओए से ही आएगा।
ये तो कमाल है। अच्छा, तो ये ओपन एक्सेस, चाहे ग्रेटिस हो या लिब्रे, ये होता कैसे है? सुबर ने दो रास्ते बताए हैं, ग्रीन ओए और गोल्ड ओए, ये क्या है?
हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये दोनों दुश्मन नहीं, दोस्त हैं, मिलकर काम करते हैं। ग्रीन ओए को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे लेखक ने अपना पेपर लिखा, जर्नल ने उसे स्वीकार कर लिया। अब लेखक उस स्वीकार किए गए पेपर की एक कॉपी, जिसे प्री प्रिंट या पोस्ट प्रिंट कहते हैं, एक खुली अलमारी में रख देता है।
खुली अलमारी मतलब?
मतलब एक ओपन डिजिटल रिपोजिटोरी। ये उनके अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हो सकती है या किसी खास विषय की सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी, जैसे फिजिक्स के लिए RASHR बहुत मशहूर है, या पबमेड सेंट्रल है मेडिकल रिसर्च के लिए। और ये तरीका अक्सर लेखक के लिए मुफ्त होता है।
अच्छा, तो ये वो पेपर होते हैं जो शायद किसी पेड जर्नल में भी छपे हों?
हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा ही होता है। हो सकता है पब्लिशर कहे कि आप 6 महीने या 1 साल रुक कर डालिए, इसे एम्बार्गो पीरियड कहते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में कुछ समय बाद या तुरंत ही लेखक को ये ग्रीन ओए कॉपी डालने की इजाजत होती है।
ठीक है, ये हुआ ग्रीन ओए, समझ गया। अब ये गोल्ड ओए क्या बला है?
गोल्ड ओए थोड़ा अलग है। इसमें लेख छपता ही ऐसे जर्नल में है जो अपनी सारी की सारी सामग्री, सारे आर्टिकल्स छपते ही तुरंत सबके लिए ऑनलाइन मुफ्त कर देता है। मतलब उस जर्नल की वेबसाइट पर जाइए और कुछ भी पढ़िए, कोई पेमेंट नहीं, कोई लॉगिन नहीं।
अब इन जर्नल्स को पैसा कहाँ से मिलेगा? पीयर रिव्यू करने का, एडिट करने का, वेबसाइट चलाने का खर्चा तो होता होगा?
हाँ, खर्चा तो होता है। तो यहाँ मॉडल थोड़ा अलग है। एक आम तरीका है आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, जिसे शॉर्ट में APC कहते हैं।
APC?
हाँ, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। ये एक फीस होती है जो पढ़ने वाला नहीं देता, बल्कि ये लेखक देता है, या ज्यादातर मामलों में लेखक का संस्थान, जैसे उनकी यूनिवर्सिटी या फिर वो एजेंसी जिसने उनकी रिसर्च के लिए पैसा दिया है, वो ये फीस जर्नल को देती है।
ओह अच्छा, तो मतलब पढ़ने वाले से पैसे लेने के बजाय छपवाने वाले से या उसके स्पॉन्सर से लिए जाते हैं। लेकिन इससे वो दिक्कत नहीं होगी जो हम सोच रहे थे कि छोटे संस्थानों के रिसर्चर या फिर गरीब देशों के लोग, वो कैसे छापेंगे अगर APC देना पड़े?
ये बहुत वाजिब सवाल है और सुबर इस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये कि सारे गोल्ड ओए जर्नल APC लेते ही नहीं हैं। बहुत सारे जर्नल हैं जो संस्थाओं की मदद से या सरकार की फंडिंग से या मेंबरशिप मॉडल से चलते हैं बिना APC के।
अच्छा,
दूसरी बात, जो जर्नल APC लेते भी हैं, उनमें से ज्यादातर के पास ऐसी पॉलिसी होती है कि वो विकासशील देशों के लेखकों के लिए या जिनके पास फंड नहीं है उनके लिए फीस या तो माफ कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। तो मकसद ये नहीं है कि रिसर्चर अपनी जेब से भरे, मकसद है सिस्टम को बदलना।
ये जानना जरूरी था, नहीं तो लगता है कि ये अमीरों का खेल बन जाएगा। अच्छा, एक और डर जो लोगों के मन में आता है, कॉपीराइट का। अगर सब कुछ ओपन कर दिया तो लेखक के अधिकार का क्या? कहीं उसका काम चोरी ना हो जाए, लोग बिना नाम दिए इस्तेमाल ना करने लगे?
ये शायद सबसे बड़ी गलत फहमी है ओपन एक्सेस को लेकर। सुपर बहुत जोर देकर कहते हैं कि ओपन एक्सेस कॉपीराइट कानून के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि उसी के अंदर काम करता है। ये पूरी तरह लेखक की सहमति पर आधारित है।
कैसे?
देखिए, लेखक अपने काम का मालिक बना रहता है, वो कॉपीराइट अपने पास रख सकता है, वो पब्लिशर को सिर्फ छापने का अधिकार दे सकता है, सारे अधिकार नहीं। और वो ये भी तय कर सकता है कि दूसरे उसके काम का क्या कर सकते हैं। इसके लिए वो क्रिएटिव कॉमन्स यानी CC लाइसेंस इस्तेमाल कर सकता है।
क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस?
जी।
ये क्या होता है?
ये कुछ स्टैंडर्ड लाइसेंस होते हैं, जैसे रेडीमेड परमिशन स्लिप्स। लेखक चुन सकता है कि वो कौन सा लाइसेंस लगाना चाहता है। एक लाइसेंस जैसे CC BY कह सकता है, मेरा काम इस्तेमाल करो, बदलो, बेचो, कुछ भी करो, बस मेरा नाम जरूर देना। दूसरा लाइसेंस जैसे CC BY-NC-ND कह सकता है, मेरा काम सिर्फ पढ़ो और शेयर करो, पर बदलो मत और बेचो मत और नाम जरूर दो।
अच्छा, तो इससे लेखक का कंट्रोल रहता है?
हाँ बिल्कुल, उसे पता होता है कि उसने क्या इजाजत दी है, और पढ़ने वाले को भी पता होता है कि वो क्या कर सकता है। तो ये डरने की बात नहीं, बल्कि ये तो लेखक को और ताकत देता है।
वाह, ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम लगता है। कॉपीराइट का मसला भी सुलझ गया। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसा। क्या ओपन एक्सेस महंगा पड़ता है? क्या ये सिस्टम चल सकता है लंबे समय तक? आर्थिक रूप से टिकाऊ है?
सुबेर कहते हैं कि ये सवाल पूछने का तरीका ही शायद थोड़ा सही नहीं है। ओपन एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि प्रकाशन में कोई खर्चा नहीं आता। जाहिर है, जर्नल चलाना है, पीयर रिव्यू करवाना है, एडिटिंग है, वेबसाइट है, खर्चा तो है।
हाँ, वो तो है।
ओपन एक्सेस का मतलब है उस खर्चे को चुकाने का तरीका बदलना। अभी क्या होता है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियां जर्नल्स की मेंबरशिप खरीदने पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती हैं। ओए कहता है कि भाई, ये जो पैसा आप पहुंच खरीदने पर लगा रहे हो, इसे सीधे प्रकाशन की सेवाओं के लिए क्यों नहीं लगाते? मतलब सब्सक्रिप्शन पर खर्च करने के बजाय एपीसी देने या ओए जर्नल को सपोर्ट करने में लगाओ।
लेकिन क्या ये सस्ता पड़ेगा? मतलब कुल मिलाकर सिस्टम का खर्चा कम होगा या बढ़ेगा?
इस पर बहुत स्टडी हुई है और कई विश्लेषण यही दिखाते हैं कि अगर पूरी दुनिया का सिस्टम ओपन एक्सेस पर शिफ्ट हो जाए, तो ये मौजूदा सब्सक्रिप्शन वाले सिस्टम से ज्यादा सस्ता और ज्यादा कुशल हो सकता है। पैसा सही जगह लगेगा, बिचौलियों के पास जाने के बजाय। तो ये सिर्फ एक आदर्शवादी सपना नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल इकोनॉमिक मॉडल भी बन सकता है।
वाह, ये तो बहुत मजबूत तर्क है। अच्छा, किताब में ओपन एक्सेस के फायदों पर भी जरूर बात की होगी। किसके लिए क्या फायदे हैं?
हाँ बिल्कुल, और फायदे हर किसी के लिए हैं। सबसे पहले लेखक को देखिए, जब उनका काम ओपन होता है तो उसे कहीं ज्यादा लोग पढ़ते हैं।
जाहिर है,
ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा लोग उसे अपने काम में कोट करते हैं, उसका हवाला देते हैं। इससे लेखक का प्रभाव, उसका इम्पैक्ट बढ़ता है। रिसर्चर्स और छात्रों के लिए तो जैसे खजाना खुल जाता है। दुनिया की बेस्ट रिसर्च किसी भी टॉपिक पर बस एक क्लिक दूर, कोई पेमेंट वॉल नहीं।
और लाइब्रेरियों के लिए भी अच्छा है ना, उनका बजट का बोझ कम होगा।
बिल्कुल, और समाज का सोचिए, जब वैज्ञानिक जानकारी तेजी से फैलेगी तो नई खोजें जल्दी होंगी, नई दवाएं, नई टेक्नोलॉजी, समस्याओं के नए समाधान जल्दी आएंगे। और हाँ, जैसा आपने शुरू में कहा था, विकासशील देशों के लिए जैसे भारत, यहाँ के शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए ये गेम चेंजर है। वो दुनिया के ज्ञान से जुड़ जाएंगे, अलग थलग नहीं रहेंगे।
लेकिन कुछ डर या मिथक भी तो होंगे ओपन एक्सेस को लेकर। जैसे लोग सोचते हैं कि जो चीज मुफ्त है वो अच्छी नहीं होगी, क्या ओए जर्नल की क्वालिटी कम होती है?
ये एक बहुत ही आम मिथक है और सुबर इसे जोरदार तरीके से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि किसी जर्नल की क्वालिटी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो पैसे कैसे कमाता है, बिजनेस मॉडल, या वो पढ़ने के लिए खुला है या बंद, एक्सेस मॉडल। क्वालिटी निर्भर करती है उसकी पीयर रिव्यू प्रक्रिया पर।
पीयर रिव्यू यानी छपने से पहले दूसरे एक्सपर्ट्स उसे जांचते हैं?
हाँ, कितनी कड़ाई से वो जांच होती है इस पर क्वालिटी निर्भर करती है। और आज बहुत सारे दुनिया के टॉप जर्नल्स जिनका बहुत नाम है, हाई इम्पैक्ट फैक्टर है, वो पूरी तरह से ओपन एक्सेस हैं। PLOS-1, E-Life, नेचर कम्युनिकेशंस के कई हिस्से बहुत उदाहरण हैं।
ठीक है, और वो दूसरा डर कि ये लेखकों के लिए बहुत महंगा है, हजारों डॉलर देने पड़ते हैं,
इसे भी सुबह तोड़ते हैं। पहली बात, जैसा हमने कहा, ग्रीन ओए तो मुफ्त है, लेखक अपनी कॉपी रिपोजिटरी में डाल सकता है। दूसरी बात, गोल्ड ओए में भी एपीसी अक्सर लेखक की जेब से नहीं जाता, वो उनके संस्थान या फंडर देते हैं, और जहां नहीं दे पाते वहां अक्सर छूट या माफी मिल जाती है। तो ये कहना कि हर लेखक पर हजारों डॉलर का बोझ पड़ता है, ये सच नहीं है।
अच्छा, तो ये मिथक भी दूर हुए। किताब के आखिर में क्या पॉलिसी वगैरह पर भी बात होती है? क्योंकि सिर्फ लेखक या जर्नल चाहे तो शायद बदलाव धीरे होगा।
हाँ बिल्कुल, सुबर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बड़े पैमाने पर और तेजी से बदलाव लाने के लिए पॉलिसी का रोल बहुत अहम है। मतलब जब यूनिवर्सिटीज या सरकारें या रिसर्च फंडिंग देने वाली बड़ी एजेंसियां नियम बनाती हैं, जिन्हें मैंडेट कहते हैं, कि भाई हमारे पैसे से जो भी रिसर्च होगी उसे ओपन एक्सेस होना ही चाहिए,
तो फिर चीजें तेजी से बदलती हैं।
हाँ, तब लोगों को करना ही पड़ता है। अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH की पब्लिक एक्सेस पॉलिसी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने कहा कि NIH की फंडिंग से हुई सारी मेडिकल रिसर्च एक साल के अंदर पबमेड सेंट्रल पर फ्री उपलब्ध होनी चाहिए, तो उससे मेडिकल ज्ञान तक पहुंच में क्रांति आ गई।
वाह, तो ये किताब तो सच में ओपन एक्सेस के हर एंगल को कवर करती है। परिभाषा, तरीके, कॉपीराइट, पैसा, फायदे, डर और पॉलिसी भी काफी कंप्लीट है।
हाँ, और बहुत ही साफ तर्क के साथ बिना किसी कन्फ्यूजन के।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो इससे निकलने वाले 3-4 सबसे बड़े संदेश या सबक क्या होंगे? मेरे लिए तो पहला और सबसे जरूरी यही लगता है कि ज्ञान, खासकर वो ज्ञान जो जनता के पैसे से पैदा हुआ है, उस पर ताला लगाना नैतिक रूप से सही नहीं है। वो सबका है, सबके लिए होना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक नैतिक अनिवार्यता है। दूसरा बड़ा सबक मेरे लिए ये है कि ओपन एक्सेस अकेडमिक क्वालिटी से समझौता नहीं करता। ये पीयर रिव्यू जैसी जरूरी चीजों को बनाए रखता है, बल्कि उन्हें और मजबूत कर सकता है क्योंकि ज्यादा लोग देख पाते हैं। ये सिस्टम को तोड़ नहीं रहा, उसे बेहतर बना रहा है।
तीसरा, वो ग्रैटिस और लिब्रे का फर्क, ये बहुत जरूरी है समझना। सिर्फ मुफ्त पढ़ना काफी नहीं है, असली ताकत उस ज्ञान को इस्तेमाल करने, उस पर कुछ नया बनाने की आजादी में है। लिब्रे ओए ही असली इनोवेशन लाएगा। सोचिए भारत में इसका कितना पोटेंशियल है।
चौथा, कि ओपन एक्सेस कोई एक फिक्स सोल्यूशन नहीं है। ग्रीन है, गोल्ड है, अलग अलग लाइसेंस हैं, पॉलिसीज हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं। यही इसकी खूबसूरती है, ये लचीला है, हर देश हर संस्था अपने हिसाब से इसे अपना सकती है।
और पांचवा जो मुझे खास तौर पे अच्छा लगा वो ये कि ये लेखकों और रिसर्चर्स को ताकत देता है, कंट्रोल वापस उनके हाथ में देता है, उन्हें ये तय करने का हक देता है कि उनका काम कैसे इस्तेमाल हो, बजाय इसके कि वो बड़ी कंपनियों के रहमोकरम पर हों।
हाँ, ये ज्ञान बनाने वालों को सशक्त करता है। और सुबर ने इन आइडियाज को किताब में कुछ ऐसी पंक्तियों में कहा है जो दिमाग में रह जाती हैं।
हाँ, जैसे वो परिभाषा वाली बात, ओपन एक्सेस साहित्य डिजिटल है, ऑनलाइन है, मुफ्त है और ज्यादातर कॉपीराइट और लाइसेंसिंग प्रतिबंधों से मुक्त है। कितनी सीधी और साफ बात है।
और वो मौजूदा सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए जो कहते हैं उसका सार है, सोचिए विद्वान अपना काम मुफ्त में लिखते हैं, रिव्यू मुफ्त में करते हैं, और फिर पब्लिशर उसी काम को पढ़ने के लिए उनसे और उनके कॉलेज से ही पैसे लेते हैं।
ये सुनते लगता है कि हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है।
और पैसे वाली बात भी कितनी सटीक है। ओपन एक्सेस का लक्ष्य प्रकाशन की लागत खत्म करना नहीं, बल्कि उसे चुकाने का एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण तरीका खोजना है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ आदर्श नहीं, प्रैक्टिकल भी है।
और ये लाइन तो सीधी रिसर्चर्स को हिम्मत देती है। ओपन एक्सेस कोई एहसान नहीं है जो हम पब्लिशर से मांग रहे हैं, ये वो चीज है जिसे हम अकादमिक समुदाय खुद अपने लिए कर सकते हैं।
ये कम्युनिटी पावर की बात है।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा और जरूरी लग रहा है, लेकिन अब जरा जमीन पर आते हैं। आज अभी एक आम इंसान या एक रिसर्चर या एक छात्र क्या कर सकता है? ये आइडियाज असल जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं?
देखिए, ये सिर्फ बड़े पॉलिसी की बातें नहीं है। एक इंडिविजुअल रिसर्चर आज ही बहुत कुछ कर सकता है। वो अपने पुराने छपे हुए पेपर्स की कॉपी, अगर पब्लिशर की इजाजत है जिसे चेक किया जा सकता है, अपनी यूनिवर्सिटी की रिपोजिटरी में डाल सकता है। इसे कहते हैं सेल्फ आर्काइविंग या ग्रीन ओए।
अच्छा,
भविष्य में जब वो पब्लिश करने के लिए जर्नल चुने तो वो अच्छे रेप्यूटेड ओपन एक्सेस जर्नल्स को प्रायोरिटी दे सकता है। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स DOAJ जैसी वेबसाइट्स है जहां ऐसे जर्नल्स खोजे जा सकते हैं। और जब वो पब्लिशिंग एग्रीमेंट साइन करे तो उसे ध्यान से पढ़े, कोशिश करे कि अपने अधिकार, जैसे ग्रीन ओए कॉपी डालने का अधिकार, अपने पास रखे।
और जो लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं या लाइब्रेरी में काम करते हैं,
उनकी भूमिका तो और भी बड़ी है। वो अपनी यूनिवर्सिटी में ओपन एक्सेस पॉलिसी बनवाने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, एक अच्छी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बना सकते हैं, रिसर्चर्स को उसे इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, और लाइब्रेरी का जो बजट है उसे धीरे धीरे महंगी मेंबरशिप से हटाकर ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स की तरफ मोड़ सकते हैं, जैसे APC भरने के लिए एक फंड बना सकते हैं।
और हम जैसे आम लोग, छात्र या कोई नौकरी पेशा इंसान,
हमारे लिए इसका मतलब है ज्ञान तक सीधी मुफ्त पहुंच। सोचिए, कोई मरीज है, वो अपनी बीमारी पर लेटेस्ट रिसर्च पढ़ना चाहता है, कोई छोटा बिजनेस है, वो किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, कोई छात्र है जिसे अपने प्रोजेक्ट के लिए विश्वसनीय जानकारी चाहिए, या कोई भी नागरिक जो समझना चाहता है कि किसी सरकारी पॉलिसी के पीछे क्या रिसर्च है, ओपन एक्सेस ये सब मुमकिन बनाता है।
हमें बस पता होना चाहिए कि ये जानकारी कहाँ मिलेगी।
हाँ, जैसे पबमेड सेंट्रल है मेडिकल रिसर्च के लिए, आर्काइव है फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस के लिए, DOAJ है हजारों ओए जर्नल्स की लिस्टिंग के लिए, गूगल स्कॉलर पर भी फिल्टर लगा सकते हैं ओए आर्टिकल खोजने के लिए। तो बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए।
तो इस किताब और हमारी इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, सबसे अहम बात जो आप लेकर जा रही हैं?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान को दीवारों के पीछे बंद रखना अब अब ये चल नहीं सकता, ये पुराना पड़ गया है। इंटरनेट ने हमें ये मौका दिया है कि हम सचमुच में इंसानियत के ज्ञान को एक साझा खजाना बना सके, एक ग्लोबल पब्लिक गुड। ओपन एक्सेस सिर्फ तकनीक या पैसे का मामला नहीं है, ये एक सोच का बदलाव है, ज्ञान को कुछ खास लोगों की चीज से सबकी चीज बनाने का।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प और कहूं तो राहत देने वाली बात यह थी कि ओपन एक्सेस अकादमिक दुनिया के जो स्थापित मूल्य हैं, जैसे पीयर रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल, उनको बनाए रखते हुए काम कर सकता है। ये कोई अराजकता नहीं फैला रहा, बल्कि मौजूदा सिस्टम को ही ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा नैतिक और ज्यादा कुशल बना रहा है। और ये जानना कि ग्रीन और गोल्ड दोनों रास्ते साथ साथ चल सकते हैं, इसे और भी यथार्थवादी बनाता है।
बिल्कुल। पीटर सूबर की ओपन एक्सेस, ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये प्रेरित करती है। ये बताती है कि बदलाव क्यों जरूरी है और कैसे मुमकिन है। हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो मानता है कि ज्ञान पर सबका हक होना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।